नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव, गणपत राव यादव और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। दिल्ली अबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की इस वर्ष की काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नोटिस भेजा है। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची को अद्यतन करने का निर्देश दिया। अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश में मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव, गणपत राव यादव और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस सत्र में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में योग के महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में योग अपनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसकी उपयोगिता को भी लोग पहचान रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व नेता अपनी बातचीत के दौरान योग पर अक्सर चर्चा करते हैं। दुनिया भर में योग की बढ़ती स्वीकार्यता के बारे में प्रधानमंत्री ने 2015 में तुर्कमेनिस्तान की अपनी यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि तुर्कमेनिस्तान में सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालय ने योग चिकित्सा को शामिल किया है। सऊदी अरब ने भी इसे अपनी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया है और मंगोलिया योग फाउंडेशन कई योग विद्यालय चला रहा है। प्रधानमंत्री ने यूरोप में योग की स्वीकार्यता की जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 1.5 करोड़ जर्मन नागरिक योग अभ्यास कर चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग आज शोध का विषय बन गया है और कई शोध पत्र पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों में योग के विस्तार पर प्रधानमंत्री ने एक नई योग अर्थव्यवस्था के बारे में बात की और योग पर्यटन के प्रति बढ़ते आकर्षण और लोगों की योग सीखने के लिए भारत आने की इच्छा का उल्लेख किया। उन्होंने योग स्थान, रिजॉर्ट, हवाई अड्डे और होटल में योग के लिए समर्पित सुविधा, योग परिधान और उपकरण, व्यक्तिगत योग प्रशिक्षकों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये सभी विकास युवाओं के लिए रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया योग को वैश्विक कल्याण के लिए शक्तिशाली तंत्र के रूप में देख रहा है। योग लाभ की समग्रता और अधिक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में योग के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैश्विक समुदाय विशेषकर देशवासियों को आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि योग मानवता को भारत का अनूठा उपहार है। उन्होंने कहा कि जीवन शैली से जुड़े बढ़ती समस्याओं को देखते हुए योग आज और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों से योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। केंद्रीय एजेंसी को केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी गई, लेकिन अदालत ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू विशेष अदालत ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए के मचुलके पर जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अपर सोलिसिटर जनरल एस बी राजू ने उच्च न्यायालय को बताया कि विशेष अदालत का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। उन्होंने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि जांच एजेंसी को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। उन्होंने कोर्ट से आदेश पर रोक लगाने और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की इस वर्ष की काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नोटिस भेजा है। न्यायालय ने नई याचिका को मौजूदा याचिकाओं के साथ जोड़ दिया और सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की। यह फैसला इस मामले पर परीक्षा को लेकर चल रही कानूनी चुनौतियों के बीच आया है। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची को अद्यतन करने का निर्देश दिया है। अगले महीने की पहली तारीख निर्धारण तिथि होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी। आयोग ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। इन राज्यों में मतदाता सूची का नवीनीकरण किया जा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड में यह अगले वर्ष जनवरी को समाप्त होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन के बाद अब वर्ष में 4 निर्धारित तिथियों का प्रावधान उपलब्ध है। इसका उद्देश्य सभी पात्र और गैर नामांकित नागरिकों को स्वयं को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने का अवसर प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आगामी आम बजट से पहले आज नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श किया। बैठक में वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्तीय सचिव टीवी सोमनाथन, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले वित्तीय मंत्री ने वित्तीय और पूंजी बाजार क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा संघों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की थी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में केरल, तटीय और अंदरूनी दक्षिण कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर असम और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक सोम सेन राय ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सोमवार तक और जम्मू संभाग में मंगलवार तक लू चलने की संभावना है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज देश की जल सीमाओं पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। रामेश्वरम के अरिचल मुनई में योग कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री ने होवरक्राफ्ट से भारतीय सीमाओं का दौरा किया। उन्होंने रामेश्वरम में मंडपन शिविर का भी दौरा किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने रामेश्वरम में अंतिम भारतीय चौकी पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। इसका 165 लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ा है। कल्लाकुरिची में मीडिया से बातचीत में जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने कहा कि 118 लोगों का इलाज चल रहा है और 6 लोगों की हालत गंभीर है। इलाज के बाद 68 लोगों की हालत बेहतर हो रही है। इस बीच जहरीली शराब त्रासदी में गिरफ्तार सभी 4 लोगों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। WTA वेनेटो ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत की अंकिता रैना आज शाम इटली के गाइबा में महिला सिंगल क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड के सुसान वनडेची से खेलेगी। इससे पहले बुधवार को प्री क्वार्टर फाइनल में अंकिता ने रोमानिया के इराना बारा को 6-2, 2-6, 6-0 से हराया था। टी20 क्रिकेट विश्व कप में एंटीगा में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 28 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 140 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बारिश से बाधित मैच में डकवर्ड लुईस नियम के अनुसार 11 ओवर और 2 गेंदों में 2 विकेट पर 100 रन बनाकर मैच जीत लिया। कल रात भारत ने सुपर 8 राउंड में ब्रिजटाउन बारबाडोस के कैंसिंगटन ओवल में अफगानिस्तान को 47 रन से हरा दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।